एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है सभी सुनने वालों का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये हमें इंसानी चेहरों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना सिखा सकती है। किताब का नाम है द नेकेड फेस, द एसेंशियल गाइड टू रीडिंग फेसेस, और इसे लिखा है लायन यंग ने।
हाँ, और ये विषय आज के ज़माने में बहुत प्रासंगिक लगता है ना। मतलब हम सब दूसरों को बेहतर समझना चाहते हैं, चाहे वो हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, घर वाले हों, या कई बार तो हम खुद को ही बेहतर समझना चाहते हैं।
बिल्कुल। और ये किताब दावा करती है कि चेहरे की जो बनावट है वो हमें किसी के स्वभाव और व्यक्तित्व की काफी गहरी समझ दे सकती है।
लेकिन ये कोई जादू टोना तो नहीं है? मतलब चेहरे से कैसे पता चलेगा?
नहीं नहीं जादू टोना बिल्कुल नहीं। लायलिन यंग इसे फिजियोनमी कहती है। यूँ समझिए कि ये चेहरे को पढ़ने की एक पुरानी कला है, एक विज्ञान है, और यंग के हिसाब से ये पूरी तरह अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। मतलब ऊपरी दिखावे से आगे बढ़कर किसी की मूल प्रवृत्तियों को समझना। किताब इसी कोशिश के बारे में।
अच्छा, फिजियोनमी। तो ये लायलिन यंग कौन है जिन्होंने इस विषय पर इतनी गहराई से लिखा है, उनके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, लायलिन यंग की पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। वो सिर्फ एक पत्रकार या लेखिका नहीं थी, हालांकि उन्होंने मुश्किल विषयों को आम लोगों के लिए आसान बनाने का बहुत काम किया, पर वो फिजियोनमी की एक गंभीर अध्येता थी। मतलब उन्होंने इसकी बाकायदा पढ़ाई की और सिखाया भी।
अच्छा।
हाँ, और खास बात यह है कि उन्होंने पूर्वी ज्ञान, खासकर जो चीनी परंपराएं हैं, और पश्चिमी मनोविज्ञान, इन दोनों को मिलाया अपनी समझ में। करीब 3 दशक से ज्यादा उन्होंने इस फील्ड में काम किया, यहाँ तक कि पारंपरिक चीनी मास्टर से भी सीखा।
अरे वाह, ये तो सच में पूरब और पश्चिम का मेल हो गया। ये नजरिया तो काफी अनोखा लगता
है ना। और वो खुद को कोई नई चीज का आविष्कारक नहीं मानती थी, बल्कि ये कहती थी कि मैं तो बस इस पुराने ज्ञान को अच्छे से समझा रही हूँ आज के लोगों के लिए, जैसे एक पुल का काम कर रही हूँ पुरानी परंपराओं और आज के पढ़ने वालों के बीच।
और एक बात आपने कही थी कि वो इसके नैतिक इस्तेमाल पर जोर देती हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है उनके काम में। जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, उनका मकसद ये सिखाना नहीं है कि लोगों पर लेबल लगाओ या उनका फायदा उठाओ, बल्कि वो कहती हैं कि इसे आपसी समझ बढ़ाने, सहानुभूति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो, ताकि इंसानी रिश्ते बेहतर बन सकें। एक तरह से कनेक्शन बनाने का टूल।
ये बात तो बहुत अहम है आजकल के माहौल में, तो और भी ज्यादा। खैर, चलिए अब जरा किताब पर आते हैं, द नेकेड फेस। इसका मूल आइडिया क्या है, किस तरह की किताब है
ये किताब? एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है चेहरे पढ़ने की कला और विज्ञान पर।
अच्छा।
और इसका मकसद है लोगों को ऑब्जर्वेशन का एक नया लेवल देना, मतलब और गहराई से देखना सिखाना। यंग का मानना है कि चेहरा सिर्फ एक मास्क या मुखौटा नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र, हमारे व्यक्तित्व, हमारी भावनात्मक आदतों और यहाँ तक कि जीवन के अनुभवों का भी नक्शा है, एक डिटेल्ड मैप।
अच्छा, मतलब चेहरे की हर छोटी बड़ी चीज, जैसे माथे का शेप हो या होंठों की बनावट, वो किसी खास पर्सनालिटी ट्रेट या बिहेवियर से जुड़ी हो सकती है, ये कह रही हैं वो।
हाँ, यंग का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही है। वो बताती हैं कि चेहरे की बनावट में दोनों चीजें झलकती हैं, हमारी जन्मजात क्षमताएं जिसे हम नेचर कहते हैं, और जीवन के अनुभवों से मिले निशान यानी नर्चर। जैसे हड्डी का ढांचा हमारी बेसिक क्षमता बता सकता है और चेहरे की लकीरें हमारी कहानी।
ये तो काफी गहरा लग रहा है सुनने में। तो ये किताब किन लोगों के लिए है? क्या सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए?
नहीं नहीं इसका दायरा काफी बड़ा है असल में, आम लोगों से लेकर प्रोफेशनल्स तक, जैसे सेल्स वाले।
हाँ, मैनेजर्स, थेरेपिस्ट्स, उनके लिए भी उपयोगी होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, उन सबके लिए जिन्हें लोगों को समझना होता है। किताब बिल्कुल बेसिक से शुरू करती है और फिर धीरे धीरे एडवांस तकनीकों तक ले जाती है, लेकिन एक बात पर यंग बार बार जोर देती हैं।
किस बात पर?
वो है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब समग्रता से देखना।
हाँ, ये तो जरूरी है। मतलब किसी एक फीचर को देखकर तुरंत कोई नतीजा ना निकाले, पूरे चेहरे को एक साथ समझना होगा।
एग्जैक्टली। चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों में चलते हैं। यंग चेहरे को समझने की शुरुआत कैसे करती हैं?
हाँ, बताइए।
वो शुरुआत करती हैं चेहरे को 3 मुख्य हिस्सों या जोन में बांटकर। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जैसा हमारे स्रोतों में भी है। पहला है ऊपरी जोन यानी माथा। ये हमारी मेंटल इंटेलेक्चुअल दुनिया से जुड़ा है, हमारी सोचने की स्टाइल, एनालिसिस करने की क्षमता, कल्पना। यूं समझिए, ये हमारी संभावित भूमिका या रोल की तरफ इशारा करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते समझते हैं।
अच्छा, माथा यानी सोचने का तरीका, ठीक है।
खाता है हमारा ईगो, हम जीवन को कैसे मैनेज करते हैं और हमारे लक्ष्य या गोल क्या है, उनकी प्रकृति क्या है,
इमोशंस और एम्बिशन।
और तीसरा है निचला जोन, नाक के बेस से लेकर ठुड्डी तक। ये हमारी इंस्टिंक्टिव, फिजिकल और बेसिक इच्छाओं से जुड़ा है, जैसे हमारी विल पावर, हमारी सहन शक्ति और जीवन जीने का हमारा तरीका।
दिलचस्प। तो मतलब अगर किसी का एक जोन ज्यादा डोमिनेंट दिखे तो ये अंदाजा लग सकता है कि उसके जीवन में कौन सी प्रेरणाएं ज्यादा हावी हैं। जैसे किसी का माथा बहुत ऊंचा है, ऊपरी जोन, तो शायद वो ज्यादा सोचने विचारने वाला रोल निभाता हो, और अगर जबड़ा मजबूत है, निचला जोन, तो शायद वो एक्शन लेने में ज्यादा यकीन रखता हो।
बिल्कुल, ये एक शुरुआती खाका देता है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम अलग अलग फीचर्स को मिलाकर देखते हैं। यंग की किताब तो हर फीचर के बारे में बहुत डिटेल में बताती है, पर हम यहाँ कुछ मुख्य फीचर्स पर फोकस करते हैं। जैसे माथे से ही शुरू करें।
हाँ, माथे को आपने सोच का परिदृश्य कहा, क्या मतलब है इसका, यंग क्या कहती हैं?
यंग के हिसाब से माथे का शेप और साइज हमारी सोचने की स्टाइल बताता है, मतलब हमारी बौद्धिक भूमिका या रोल क्या है। जैसे एक चौड़ा और ऊंचा माथा हो तो शायद वो व्यक्ति ज्यादा गहराई से, व्यापक तरीके से सोचता हो, एनालिटिकल हो। वहीं अगर माथा थोड़ा नीचा या ढलान वाला है तो शायद वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो, तुरंत एक्शन लेने वाला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
सही कहा, क्योंकि माथे के ठीक नीचे भौहें होती हैं और उन्हें स्वभाव की अभिव्यक्ति कहा गया है। तो ये सोच और स्वभाव कैसे मिलते हैं?
यही तो सिंथेसिस, मतलब सबको मिलाकर देखने का महत्व आता है। मान लीजिए किसी का माथा बौद्धिक है, जैसा हमने कहा, लेकिन उसकी भौहें मोटी और सीधी हैं। यंग के अनुसार ये दृढ़ और तार्किक स्वभाव का संकेत हो सकता है।
अच्छा,
तो ये कॉम्बिनेशन शायद ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करे जो न सिर्फ गहराई से सोचता है बल्कि अपने आइडियाज पर मजबूती से अमल भी करता है। दूसरी तरफ अगर उसी बौद्धिक माथे के साथ पतली या घुमावदार भौहें हों तो शायद उसमें सेंसिटिविटी या आर्टिस्टिक झुकाव ज्यादा हो।
अब आंखों पर आते हैं, आत्मा की खिड़कियां, ये तो बहुत सुना है, ये हमारे बारे में क्या बताती हैं यंग के अनुसार?
यंग मानती हैं कि आंखें सबसे ज्यादा राज खोलती हैं, हमारी इमोशनल पहुंच, हमारी जिज्ञासा, हमारा फोकस। जैसे बड़ी खुली आंखें शायद ऐसे इंसान का संकेत हो जो इमोशनली ज्यादा खुला है, चीजों को जल्दी ग्रहण करता है, जबकि छोटी गहरी आंखें ज्यादा फोकस्ड, गहरी सोच वाले या शायद थोड़े शक्की स्वभाव की ओर इशारा कर सकती हैं। आंखों के बीच की दूरी भी कुछ कहती है विचारों के खुलेपन या बारीकियों पर ध्यान देने के बारे में।
और नाक, इसे महत्वाकांक्षा और अहंकार का स्तंभ कहा गया है, ये हमारे लक्ष्यों या गोल्स के बारे में क्या बताती है?
यंग के अनुसार नाक का आकार और वो कितनी उभरी हुई है, ये हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे कॉन्फिडेंस और दुनिया में हम अपनी जगह कैसे बनाते हैं उससे जुड़ा हो सकता है। जैसे एक प्रोमिनेंट मजबूत नाक, जिसे कभी कभी रोमन नाक कहते हैं, वो शायद स्ट्रॉन्ग विल पावर और लीडरशिप क्षमता का संकेत हो, मतलब बड़े लक्ष्यों की तरफ झुकाव।
अच्छा,
वहीं एक छोटी नाक शायद ज्यादा सोशल या मिलजुल कर काम करने वाले लक्ष्यों की ओर इशारा करे, लेकिन फिर इसे आंखों की अभिव्यक्ति के साथ मिलाकर देखना होगा, क्या वो महत्वाकांक्षा बहुत फोकस्ड है या ज्यादा खुली हुई।
समझ गया। और फिर गाल, मुंह, होंठ, ठुड्डी, जबड़ा, ये सब भी कहानी में अपना हिस्सा डालते हैं।
बिल्कुल, हर चीज, ऊंची चीक बोन्स यानी गाल की हड्डियां प्रभाव और अधिकार से जुड़ सकती हैं, भरे हुए गाल गर्मजोशी का इशारा हो सकते हैं, मुंह और होंठ बताते हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इमोशंस दिखाते हैं, भरे होंठ शायद उदारता और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस से जुड़े हों, जबकि पतले होंठ सेल्फ कंट्रोल और प्रिसिजन से जुड़े हों।
और ठुड्डी और जबड़ा, ये विल पावर से जुड़े हैं?
हाँ, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी दृढ़ता और हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, यानी गोल पर्स्यूट, उसके बारे में बताते हैं। एक मजबूत चौकोर जबड़ा अक्सर दृढ़ निश्चय और स्टैमिना से जोड़ा जाता है।
और चेहरे पर जो लकीरें बन जाती हैं उम्र के साथ, झुर्रियां, वो सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है।
यंग के हिसाब से वो हमारी भावनात्मक आदतों का नक्शा है, जैसे माथे पर चिंता की लकीरें या आंखों के कोनों पर खुशी की रेखाएं जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं या भौहों के बीच जो गहरी लकीर बन जाती है फोकस करने से, ये सब बताती हैं कि हमने कौन सी भावनाएं बार बार महसूस की हैं। ये नर्चर वाला पहलू है जो अनुभव से बनता है।
तो मतलब सबसे जरूरी बात यही निकल कर आ रही है कि किसी एक फीचर पर अटकना नहीं है,
बिल्कुल
पूरे चेहरे को एक बातचीत की तरह देखना है। अलग अलग फीचर्स के बीच क्या तालमेल है, क्या विरोधाभास है, ये समझना ही असली कला है ना?
एकदम सही कहा आपने। यही यंग का मुख्य संदेश है, सिंथेसिस, सबको साथ मिलाकर देखना। चलिए अब इस किताब के कुछ और कोर मैसेजेस को समेटते हैं।
हाँ, अगर तीन चार सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
पहली बात तो यही, जैसा हमने कहा कि चेहरा एक पठनीय जीवनी है। इसमें हमारी पैदाइशी बनावट, नेचर, और जीवन के अनुभव, नर्चर, दोनों दिखते हैं। हमारी क्षमता, रोल, और हमारी कहानी, एक्सपीरियंसेस, गोल्स।
ठीक है, पहला पॉइंट ये।
दूसरा, समग्रता, होलिस्टिक व्यू, पूरी तस्वीर देखनी है, किसी एक हिस्से पर अटकना नहीं है। चेहरे के सारे हिस्से आपस में बात करते हैं।
दूसरा।
तीसरा, सहानुभूति, जजमेंट नहीं। इस ज्ञान का मकसद लेबल लगाना नहीं, बल्कि समझ बढ़ाना है, ताकि हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें, रिश्ते बना सकें।
ये बहुत जरूरी है। तीसरा।
और चौथा, ये डायनामिक है, स्थिर नहीं। चेहरा समय के साथ बदल सकता है, जैसे हमारा व्यक्तित्व बदलता है। ये हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है, भविष्य बताने का कोई दावा नहीं करता।
ये चारों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सोचिए, भारत जैसे देश में जहाँ रिश्ते इतने मायने रखते हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ये समझ कितनी काम आ सकती है। अगर हम अपने सहकर्मियों या परिवार वालों की कम्युनिकेशन स्टाइल या उनकी प्रेरणाओं को, उनके रोल या गोल को थोड़ा बेहतर समझ पाएं, तो कितनी गलतफहमियां कम हो सकती हैं, शायद हम ज्यादा हमदर्दी से पेश आएं।
निश्चित रूप से आपसी व्यवहार में सुधार की काफी गुंजाइश दिखती है, अगर इसे सही नीयत से इस्तेमाल किया जाए।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो एकदम याद रह जाएं, कुछ कोट्स या खास विचार?
हाँ बिल्कुल, कुछ विचार तो ऐसे हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसा स्रोतों में बताया गया है, एक विचार है कि चेहरा शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा है। ये झूठ नहीं बोल सकता कि हम मौलिक रूप से कौन हैं। या दूसरे शब्दों में, आपका चेहरा आपकी आत्मकथा है।
वाह, मतलब चेहरा हमारी असलियत का आईना है।
हाँ, और दूसरा वो नैतिकता वाला, चेहरे पढ़ना लोगों को आंकना नहीं, बल्कि उन्हें इतनी गहराई से समझना है कि उनसे अधिक प्रभावी ढंग से प्यार किया जा सके। या फिर लेबल में सीमित करना नहीं, बल्कि उनके साथ संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना है। ये वही सहानुभूति वाली बात।
ये बहुत पावरफुल है।
और एक और जो नेचर और नर्चर को जोड़ता है, हर चेहरे में क्षमता और अनुभव दोनों की कहानी होती है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं और जो जीवन ने हमें सिखाया है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपनी बनावट नहीं, अपने अनुभवों का भी नतीजा है।
मैं बिल्कुल। और आखिर में वो होलिस्टिक वाली बात फिर से, कभी भी किसी व्यक्ति को एक ही विशेषता से ना आंकें। चेहरा उसके हिस्सों के बीच एक संवाद है। ये बार बार याद दिलाता है कि टुकड़ों में नहीं, पूरी तस्वीर देखनी है। ये विचार वाकई हमें सतही जजमेंट से बचने की चुनौती देते हैं।
बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इस समझ को असल जिंदगी में, रोजमर्रा में कैसे इस्तेमाल करें।
हाँ, ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। इसके क्या फायदे हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में?
अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में सोचें, यंग के नजरिए से शायद भर्ती करते समय ये कैंडिडेट की नेचुरल वर्किंग स्टाइल या भूमिका, रोल को समझने में एक एक्स्ट्रा लेयर दे सकता है। या सेल्स में कस्टमर कैसे डिसीजन लेता है, उसके लक्ष्य क्या है, ये समझने में मदद मिल सकती है।
और टीम मैनेजमेंट में?
टीम मैनेजमेंट में शायद ये समझने में मदद मिले कि किस टीम मेंबर को किस तरह का काम या मोटिवेशन सूट करेगा। क्या वो ज्यादा सोचने वाला है, माथा प्रभावी, या एक्शन लेने वाला, जबड़ा प्रभावी। इससे काम सौंपना आसान हो सकता है।
मतलब किसी के चेहरे के पैटर्न को देखकर, जैसे कोई ज्यादा एनालिटिकल है या ज्यादा प्रैक्टिकल, उससे बात करने का तरीका बेहतर हो सकता है।
हाँ, यंग की तकनीकें इसी तरह के संकेत पढ़ने का दावा करती हैं। और पर्सनल लाइफ में भी, पेरेंटिंग में बच्चे के बेसिक नेचर को समझना, या रिश्तों में पार्टनर की जरूरतें और कम्युनिकेशन स्टाइल को बेहतर पहचानना, शायद इसमें मदद मिले। यहाँ तक कि आम सोशल इंटरैक्शंस में भी लोगों से जुड़ना थोड़ा आसान हो जाए।
एक छोटा सा उदाहरण लें, मान लीजिए किसी सहकर्मी का जबड़ा थोड़ा कमजोर या पीछे की ओर है, यंग के हिसाब से शायद उन्हें सीधी टकराव वाली भूमिका देने के बजाय सहयोग या समर्थन वाली भूमिका में वो ज्यादा कंफर्टेबल हों, या किसी रिश्तेदार की नुकीली ठुड्डी और तेज आंखें देखकर शायद ये समझें कि उन्हें इंटेलेक्चुअल बातचीत पसंद है और फिर आप उस हिसाब से उनसे बात करें ज्यादा समझदारी से।
बिल्कुल, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आपसी समझ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बस याद रखना है, यंग के अनुसार ये सब सहानुभूति और बेहतर संवाद के लिए है, किसी को लेबल करने के लिए नहीं।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे अहम बात निकल कर आई है वो शायद यही है कि चेहरे को एक कॉम्प्लेक्स डायलॉग की तरह देखना कितना जरूरी है। किसी एक फीचर पर अटकने के बजाय अलग अलग हिस्सों के बीच का बैलेंस और इंटरैक्शन समझना। और हाँ, इस समझ को सहानुभूति और कनेक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने पर जो जोर है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगता है।
मेरे लिए इस ज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू शायद सेल्फ अवेयरनेस की संभावना है, मतलब दूसरों के चेहरों को पढ़ने से पहले अपने चेहरे को समझना, अपनी ताकत, अपनी चुनौतियां, अपनी कहानी। जैसा यंग कहती हैं, हमारा चेहरा हमारी अपनी जीवनी है। ये समझ शायद हमें पहले खुद को और फिर दूसरों को ज्यादा गहराई से जानने में मदद कर सकती है, और इससे हमारे मानवीय संपर्क सच में बेहतर हो सकते हैं।
तो सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, अपने खुद के चेहरे को या अपने आसपास के लोगों के चेहरों को इस नई नज़र से देखने पर क्या दिखता है? क्या कोई पैटर्न, कोई कहानी उभरती है जो पहले ध्यान नहीं दी थी?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।